सहनावत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि माया बहिर्योद् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानन्द भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतेर हर 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 महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित प्रबोध सुधाकर नामक ग्रंथ का विचार कर रहे हैं, जिस ग्रंथ में तीन प्रकरणों का निरूपण किया गया है। पहला प्रकरण है वैराग्य का प्रकरण है, दूसरा प्रकरण है बोध का प्रकरण है, तीसरा है भक्ति का। तीन तो दूसरा प्रकरण चल रहा है, कौन सा प्रकरण है? बोध का। तो बोध हमें किसका करना है? जीव जगत और ईश्वर का। किसका? तो जीव और ईश्वर के बारे में हमने बता दिया, याद है ना? जीव किसका नाम, ईश्वर किसका नाम है? जो माया को अधीन कर लेवे, मतलब यदि ब्रह्म के साथ माया जुड़ जाए तो उसका नाम क्या है? लेकिन ध्यान देना, माया माया के अधीन ब्रह्म ना हो बल्कि उसको अपने बस में किया हो तो क्या हो जाएगा उसका नाम? ईश्वर। यदि माया के बस में हो जाए तो जीव, बस अंतर इतना ही है भाई। दो चीजें हैं, आपके पास धन है, धन के मालिक बन जाओ तो ईश्वर, और धन के गुलाम बन जाओ तो क्या बन जाओगे? नौकर दास। और कोई अंतर है क्या? केवल वृत्ति का अंतर हो रहा है। किसका? जीव ब्रह्म में जो एक वृत्ति बनती है, एक ही चीज को जो बस में कर ले। हम जिसे इंद्रियों के मालिक बनते हैं, इंद्रियों के गुलाम बनते हैं, है? यदि मालिक बन गए तो ऋषि कैसे है? क्या नाम हो जाएगा? ऋषिक माने इंद्रियों पर। ऋषिक किसका नाम है? इंद्रियों का। अरे ऋषिक माने इंद्रियां, शाब्दिक अर्थ है ऋषिक माने क्या हुआ? इंद्रियां। इंद्रियों का जो ईश है, ईश माने शासक है, इंद्रियां जिसके नियंत्रण में है, उसका नाम क्या है? ऋषिकेश। आपकी इंद्रियां और आपके भोग यदि आपके नियंत्रण में है तो आप क्या बन गए? ऋषिकेश। आपका नाम क्या हो जाएगा? ऋषिकेश। और इंद्रियों के बस में आप हो गए तो आप जीव उदास। क्या बन जाओगे? जीव। तो ब्रह्म में कोई अंतर है क्या? वो वृत्ति को आप गुलाम मत बनो। आप जगत के अधीन बन गए तो जीव, और जगत के मालिक बन गए तो ईश्वर। बस अब ये जगत क्या है तो बताया, जगत में तीन चीजें हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। स्थूल के भीतर कौन है? सूक्ष्म। और सूक्ष्म के भीतर कौन है? कारण। और इन तीनों के भीतर जो तीनों का कारण है, तीनों की प्रवृत्ति का हेतु है, वह चौथा है जिसका नाम क्या है, तुरीय पद। इस पे हम लोगों ने कल चर्चा किया। ये सब निरूपण क्यों किए जा रहे हैं जगत का, क्योंकि जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करके, जगत से अपनी दृष्टि हटा करके हम चौथे में अपनी दृष्टि करें। चौथा जो कौन पद है, तुरीय पद है, चौथा पद है, उसमें अपनी दृष्टि को करें। तो स्थूल क्या है, ये आप जानते हैं, मांस आदि का जो लोथड़ा है, अपवित्र है, आत्मा नित्य क्या है, शुद्ध है। सूक्ष्म भी जानते हैं, सत्तर तत्वों का मिला हुआ जो कौन है, सूक्ष्म शरीर है, जिसमें संस्कार के अंकुर पैदा होते हैं। क्या पैदा होते हैं, और संस्कार जहां रहते हैं पूरी तरह भरे, उसका नाम है कारण शरीर। वासनाओं का जाल जहां रहता है उसका नाम कौन है, कारण शरीर। कल इसको हमने एक उदाहरण से समझाया था, बीज है कारण है, बीज है कारण है, बीज में अंकुर फूट गया तो हो गया सूक्ष्म अंकुर। भाई देखो, कोई भी विषय बिक गया, धन बिक गया तो क्या पैदा हो गया, लोभ है, जो पैदा वृत्ति आ गई लोभ, लोभ अंदर मौजूद था, लोभ का बीज, तभी तो लोभ पैदा हुआ। एक बच्चे के भीतर लोभ नहीं पैदा होता, धन के लिए भी महत्व नहीं पैदा हुई है। स्त्री अथवा पुरुष बिक गया तो क्या पैदा हो गया, काम पैदा हो गया। जो अंकुर उत्पन्न हुआ उसका नाम क्या है, सूक्ष्म शरीर। और उस अंकुर को आपने पेड़ बना दिया, क्या बना दिया, खूब सींच सांच करके, खाद पानी डाल करके क्या बना दिया, एक वृक्ष बना दिया। तो जो वृक्ष बन गया वह हो गया स्थूल। तो ये वृक्ष किसने बनाया है, इस वृक्ष को हमने ही क्या किया, खूब सींच करके, ये सब करके हमने क्या बना दिया, स्थूल। और स्थूल तभी बना था जब आपके भीतर सूक्ष्म का संस्कार था, तो सूक्ष्म का संस्कार न होता, सूक्ष्म में संस्कार न होता तो स्थूल बनता नहीं। और सूक्ष्म में संस्कार का भी कारण कौन था, अज्ञान था, जिसमें वासनाएं थी, वासनाओं के कारण हमारे भीतर कई तरह की कल्पनाएं पैदा हुई। अथवा एक उदाहरण हम लोग बाबा लोग बहुत सुनाते हैं, आप लोग लिफाफा देते हो ना, यहां तो दो ही शरीर हैं, लिफाफा देते ना, तो खाली लिफाफा देते हैं, लिफाफा के भीतर कुछ रहता है, तो लिफाफे का क्या है, जान है, प्राण है। कहते उसका प्राण निकाल लिया हम लोगों ने, उसका माल निकाल लो, तो कहते प्राण है। लिफाफे की कोई वैल्यू है क्या, वैल्यू किसकी है, उसके भीतर जो प्राण भरा है उसकी वैल्यू है। तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, ध्यान देना है। शरीर तो चाहे हमारा हो चाहे पशु पक्षी का हो, क्या फर्क पड़ता है, शरीर के भीतर जो कौन है, प्राण है, जिसमें सारे संस्कार पड़े हैं। नहीं तो आजकल देखो मनुष्य शरीर तो मिले हुए हैं, लेकिन संस्कार किसके पड़े हुए हैं, पशुओं के। अरे पशुओं के भी नहीं है, आजकल अखबार जो पढ़ते हैं और टीवी में न्यूज सुनते हो तो लगता है पशुओं से भी बदतर संस्कार पड़े हुए हैं। तो बताओ उस मनुष्य शरीर की कोई कीमत है क्या, तो मनुष्य की कोई कीमत नहीं है। मनुष्य के भीतर जो प्राण है, प्राण माने जो सूक्ष्म शरीर है, उसी की कीमत है। तो जो लिफाफे के भीतर क्या है, प्राण क्या है, लेकिन दोनों का अधिष्ठान कौन है, कागज। जो नोट रखे हो वो भी किससे बना है, और जो लिफाफा है वो भी किसका बना है, कागज। तो यहां तो दो शरीर है, लेकिन चाहे सूक्ष्म होवे, चाहे कारण होवे, चाहे सूक्ष्म होवे, चाहे स्थूल होवे, तीनों का अधिष्ठान तो एक ही है, कौन है, ब्रह्म। तीनों का अधिष्ठान कौन है, ब्रह्म ही है। ब्रह्म न होवे तो न स्थूल भी हो सकता है, न सूक्ष्म होगा, न कौन होगा, कारण होगा, क्योंकि तीनों उसके ऊपर कल्पित है। तीनों उसके ऊपर क्या है, देखो वस्त्र है एक ही, इन वस्त्र के ऊपर एक कुर्ता है, एक पायजामा है, एक दुपट्टा है, हमने क्या किया है, ये अध्यारोपित है, कल्पित है, उसको मान लिया गया है। लेकिन वास्तव में सत्ता किसकी सत्य है, हाँ तो ऐसे वो देते हो क्या, पंखा, पंखा तो स्थूल है, लाल पीला नीला जो रंग है, उसके जो वायरिंग है वह क्या हो गया, सूक्ष्म। अब वायरिंग है ठीक, लेकिन बिजली ना हो तो बताओ क्या करेगा पंखा, तो बिजली की सत्ता से क्या करता है, काम करता है ना, तस्य प्रवृत्ति हेतु, जो उसकी प्रवृत्ति का हेतु है, सूक्ष्म शरीर की प्रवृत्ति का क्या है, जो हेतु है। अब बुद्धि जिसके आश्रय पर रहती है उसका नाम है तुरीय पद, चौथा ब्रह्म पद है। तो राजी क्या ब्रह्म में आता जाता है क्या? यदि ब्रह्म में सबकी प्रवृत्ति का हेतु बने तो मरने के बाद मरने वाले शरीर में ब्रह्म है कि नहीं है? क्यों भाई, जो शरीर मर गया है उसमें ब्रह्म है कि नहीं है? हाय भाई ब्रह्म है। यदि ब्रह्म न होवे, ब्रह्म न होवे तो उस जगह में ब्रह्म नहीं है, तो ब्रह्म सर्वव्यापक कैसे हो सकता है? फिर ब्रह्म में प्रवृत्ति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसमें ब्रह्म की विशेष सत्ता नहीं है। विशेष सत्ता किसको बोलते हैं? यही बताया कि तत्सार भूतो, 114वां श्लोक में, जो सूक्ष्म शरीर का सार है वह कौन है? बुद्धि है। उस बुद्धि में जो चैतन्य की परछाई पड़ी, उस परछाई पड़ने से उसमें विशेष सत्ता आ जाती है, और उसी सत्ता का नाम हो जाता जीव। वही सबसे पहले मैं बुद्धि करता है, और उसके कारण ही शरीर में मैं की स्फुरणा होती है। यदि वो विशेष सत्ता न आवे न तो सुसुप्ति में मैं की स्फुरणा हो जाएगी क्या? सुसुप्ति अवस्था में हूं तो है, लेकिन मैं नहीं है। मैं कब आएगा? जब अंतःकरण जो लीन है वह क्या हो जाएगा? उद्भूत होगा, उठेगा, और उठेगा तो उसमें चैतन्य की क्या पड़ जाएगी? परछाई। और जैसे चैतन्य की परछाई पड़ जाएगी तो मैं हूं, फिर मैं क्या हूं? अभाव उपाधि, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं महात्मा हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं धनी हूं, मैं गरीब हूं, मैं मालिक हूं, तमाम वृत्तियां उठना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इन सब की वृत्ति उठने के पहले कौन है? मैं। अब मैं क्यों उठा बोलो भाई? जब उस चैतन्य की परछाई कहां पड़ी? अंतःकरण में पड़ी, तो उसमें विशेष सत्ता हो गई। अब विशेष सत्ता से ज्ञान हुआ मैं भी कुछ हूं, अब कुछ हूं तो फिर क्या हूं खोजना शुरू कर देता हूं। अब क्या हूं तो जगत से अपने संबंध बना करके हम जगत का अपना परिचय बताते, मैं पिता हूं, पुत्र हूं, पत्नी हूं, भाई हूं, बहन हूं, सब जगत से संबंध। मैं के साथ ही इदम शुरू हो जाएगा, ध्यान देना। यदि मैं न शुरू हुए न, अहम न आवे न, तो इदम भी। लेकिन मैं के खड़ा, जैसे पिता के खड़ा होते ही कौन खड़ा हो जाएगा? पुत्र। पति के खड़ा होते ही कौन खड़ा हो जाएगा? पत्नी। पति के खड़ा होते ही कौन है? पत्नी। ऐसे मैं के खड़ा होते ही तुरंत कौन खड़ा हो जाएगा? इदम खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं को खड़ा करने वाला कौन है बोलो भाई? जो चैतन्य की परछाई कहां पड़ी? अंतःकरण में पड़ी। अंतःकरण में पड़ने से ही उसमें विशेष सत्ता आ जाती है, और विशेष सत्ता से ही मैं की स्फूर्ति होती है, और मैं के बाद इदम की स्फूर्ति होना शुरू हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं परछाई पड़ने ही न दो ज्यादा, इतनी परछाई पड़े जितना परछाई का काम होवे। कितना भाई क्या बताया जाए? जैसे वो बताए थे ना, एक घड़ा है, घड़े के भीतर क्या है? जल है, और जल में परछाई पड़ गई, और जल खूब व्यापक है तो परछाई पड़ेगी, तो एक बूंद में परछाई पड़ जाए, और इतने बड़े जल में परछाई पड़ जाए, तो कौन सी परछाई का रिफ्लेक्शन ज्यादा प्रकाशित करेगा? ज्यादा वाले का। तो हमारे भीतर जितनी वासनाएं रहेंगी, ठीक है ना, तो उसका प्रकाश उतनी तेज निकलेगा, मतलब अंतःकरण जितना बड़ा रहेगा, अंतःकरण वासना है ना, तो जल जितना भरा हुआ है तो हमारा प्रकाश क्या होगा? उतना ज्यादा फैलेगा, और प्रकाश इतना फैल जाएगा सारी दुनिया का ज्ञान हम ले लेंगे। आज हम लोग यही तो चाहते हैं, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में आ जाए, लेकिन मुट्ठी में कभी दुनिया तो किसी की आई है ही नहीं। और ज्ञानी के भीतर प्रकाश पड़ता है, इन ज्ञानी की तो बहुत वासनाएं नहीं है, इतनी वासना है कि शरीर का निर्वाह मात्र हो जाए। शारीरम केवलम कर्म कुरुवन न आपनोति किल्विषम, इतना करता कि शरीर को प्रकाशित कर दे रहा, शरीर की सत्ता उपस्थित है, बस। संसार के विषयों के प्रति सामान्य बुद्धि तो है, इन विशेष बुद्धि का अभाव होता है। अब विशेष बुद्धि के अभाव हो जाने से संसार में न कहीं से दुख होता है, न कहीं से उसको क्या होता है? सुख होता है। अब देखो आप हो, ठीक ना। अब आपको हम जानते हैं, आप कहाँ आते हो, प्रेमपुरी में आते हो, तो आपसे हमारा क्या है, सामान्य प्रेम है, नहीं प्रेम है, न आपसे हमें राग है, न आपसे हमें क्या है, द्वेष है। अब हमने आपके बारे में विशेष रूप से जानना शुरू कर दिया, आप किसके शिष्य हो, कितना पैसा है आपके पास है, कितने बच्चे हैं, अकेले हैं, रहती हो कि अलग रहते हैं, जहां विशेष रूप से जानना शुरू कर दूंगा वहां आपसे हमें क्या हो जाएगा, या तो राग हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा। अब मान लो हम उनके शिष्य हो, अरे उनके हो, वो तो ऐसे ही हैं, आपसे तुरंत क्या हो गई, एक द्वेष बुद्धि हो गई, नहीं हो गई। अब आते हो बस इतने हमारा जानना है, इसके अलावा मेरे को आपके डिटेल में कुछ जानना ही नहीं है। तो बताओ आपसे हमारा कोई राग द्वेष रहेगा क्या, हाँ प्रेम तो रहेगा, धन प्रेम तो है, सत्संग में जो आता है सबके प्रति हमारा क्या है, एक प्रेम तो है, लेकिन न किसी के प्रति राग है और न किसी के प्रति, इसलिए मैं तो किसी के प्रति जानने का प्रयास ही नहीं करता। नहीं सही बताऊं, बहुत होता है किसी के यहां कोई बादशाह नहीं है, मकान है, अब तुरंत लोभ पैदा हो जाएगा, अरे माता मुझे अपना बेटा बना लो, ध्यान ना कहीं न कहीं, अरे आपका बेटा विदेश में रहता है, घर में कौन रहता है, हम आपके घर में रह जाए, कहीं न कहीं लोभ, कहीं न कहीं कोई न कोई वृत्ति आपके भीतर क्या हो जाएगी, अरे आप हमें न बुला करके दूसरे बुला लोगे तो क्या हो जाएगा, वहां द्वेष हो जाएगा। तो जहां जगत के विषय में विशेष का ज्ञान करोगे वहां आपको क्या हो जाएगा, सुख दुख अच्छा बुरा सब कुछ फंसते चले जाओगे। इसलिए संसार में क्या करना चाहिए, सो जाना चाहिए। क्या है, लोग जगाने आते हैं, मैं आपको सुलाने आ रहा हूं, लोग कहते हैं जग जाओ, जागृत उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त भरान निभूत, तक कहते हैं ना, उठो जागो और उस तत्व को पाओ। तो हम भी कहते हैं उठो, कहां से उठो, संसार से उठो, संसार में ही कब तक रमण करते रहोगे, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति यस्याम जागृति भूतानि, संसार के प्राणी जिस संसार में जगते हैं, जिस संसार का मंथन करते हैं, जिस संसार का अवलोक प्रेक्षण करते हैं, ज्ञानी उसमें क्या करता है, सोता रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है। और सोने का मतलब जानते ना, नींद की गोली खा के नहीं सोता है, विज्ञान विरतिर सुप्ति, किसी वस्तु के विषय में विशेष ज्ञान का अभाव होना ही सुसुप्ति है। क्या है, किसी वस्तु के विषय में विशेष ज्ञान का होना ही क्या है, सुसुप्ति है। और किसी वस्तु के विषय में विशेष ज्ञान का हो जाना, विशेष ज्ञान का न होना सुसुप्ति है। अब विशेष ज्ञान का हो जाना जागृत है। तो आप जानना चाहते हो, सोना चाहते हो, कहां सोना चाहते हैं, सब कहने की बात है, सब जागना चाहते हैं। महाराज जी के कहां कहां आश्रम हैं, महाराज जी के कितने शिष्य हैं, महाराज जी के पास कितनी गाड़ियां हैं, हम सब क्या जानना चाहते हैं, उनके विषय में ही जानना चाहते हैं। अब खोद खोद के पूछते हैं, नहीं पूछते संसार के विषय में, क्या बनाया, कहीं शादी में जाओ क्या बनाया, कितने लोग आए थे, क्या पहने थे, क्या दिया, जबकि हमें कुछ लेना देना नहीं है। मैंने देखा है लोगों को, हमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी आप न जाने क्या, अरे इतना पैसे वाला था, इतना कंजूस था, कुछ खर्च नहीं किया, आप ये सब जान करके भी क्या करोगे, मेरे को बता दो, कुछ मिलने वाला है क्या, बस या तो राग होगा या तो क्या होगा, द्वेष होगा। और राग द्वेष आपको संसार के आवागमन के चक्कर में क्या करेगा, फंसाएगा ही फंसाएगा। इसलिए जगत के बारे में बहुत मत जानो। कई लोग हमसे पूछते हैं, महाराज जी ऐसा कोई साधना बता दो हम इनके मन में क्या चल रहा है वो जान जाऊं। हमने कहा भैया जब तक नहीं चल रहा है ना तभी तक शांति है, और जिस दिन पता चल जाए कि तुम्हारे बेटे के मन में क्या चल रहा है ना, क्यों बेटा मना रहा होगा ये बाप कब मरेगा, कब इसकी चेकबुक मेरे कंट्रोल में आएगी, पत्नी के मन में कुछ चल रहा होगा, वो नहीं बताऊंगा क्या चल रहा है, वो आप लोग समझते हो। तो यदि पता चल जाएगा तो जो प्रेम नाम की चीज थोड़ी सी दिख भी रही ना, वो सब दिखना क्या हो जाएगा, बंद, आप जी नहीं सकते हो। इसलिए जगत के बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास मत करना, इसलिए क्या करो, सिमन भाई
सो जाना है।
विज्ञान विरतिर क्या है, यश्याम जागृति भूतानी। हाँ, प्रेमपुरी के बाहर रहने वाले लोगों को जागने देना, प्रेमपुरी के जो बाहर लोग रह रहे हैं ना उनको तो क्या करना, क्योंकि वो भी तो काम होना है नहीं होना है, वो काम कौन करेगा, संसार वाला काम, उनको जागने देना। लेकिन कोई तो क्या करे, सोए नहीं सोए, तो प्रेमपुरी वाले लोग क्या करें, सो जाएं। कहां से सोना है, संसार में सो जाना। अयश्याम जागृति भूतानी, संसार के सारे प्राणी जिस अपने स्वरूप में सोते रहते हैं, जिस परमात्मा का अधिष्ठान का जिसको कोई ज्ञान है ही नहीं, तस्याम जागृत संयमी, उसमें जो संयमी है प्रेमपुरी वाले लोग हैं वह हमेशा क्या करते रहते हैं, जागते रहते हैं। तो आप लोग क्या करो, अब जागना, कहां जागना, अपने स्वरूप में जगना, होश में रहना, और सो जाना है, कहां सोना है, संसार में सो जाना है। और संसार में सोने का मतलब क्या हुआ, संसार में विशेष बुद्धि का अभाव कर देना, अरे हमारे अंदर नहीं आ रहा है, हम आपकी भी कमियां बता रहे हैं, हम सत्संग भवनों में सत्संग सुनने वालों का, अच्छा किसके शिष्य हो बच्चे बताया ना, उनके हो, अच्छा अभी दीक्षा नहीं लिया क्या, कोई कहा अरे दीक्षा के बिना तो नरक में जाओगे पक्का, अरे वो महाराज बड़े अच्छे हैं, चलो उनके यहाँ उनसे दीक्षा तुम ले लो, मतलब जैसे हम एजेंट बन गए हैं, सर बताओ एलआईसी एजेंट बन जाते हैं, एलआईसी एजेंटी का काम करना शुरू कर लेते हैं कि हमारा परिवार बढ़ता जाए हमारे, अरे ठीक है हम तो कहते हैं कि भाई देखो प्यार किसी से करो, प्यार किसी से करो, अब अल्लाह किसी के साथ रहे हो तो रहना उचित है क्या, बोलो रहते किसी के साथ हो, प्यार किसी से आपका है तो रहना उचित है क्या, अरे आप यहां आते हो हम तो कहते जो इस गद्दी पे बैठे वही आपका गुरु है, सच बताऊं इस गद्दी पे बैठने वाला कोई शरीर नहीं है, बल्कि कौन है, जो इस गद्दी पे बैठे उसमें अपने ही गुरु रूप को देख लेना, लेकिन हमारे गुरु जी आए हैं, उनके गुरु जी आए हैं, ये मेरा तेरा का जितना चक्कर है, चाहे संसार का चक्कर रहा होगा चाहे यहां का चक्कर रहा होगा, ये दोनों चक्कर आपको संसार में ही बांधने वाले होंगे। आगे हम लोग चलते हैं, ये तो आपके सामान्य ज्ञान की बातें बता रहा हूं, लेकिन एक गलतियां न किया करो। 115वां श्लोक, चल तरंग चल तर तरंग संगात प्रतिबिंबम, बोलना भास्करस्य च चलम स्यात् अस्ति तथा चंचलता चैतन्ये चित्त चांचल्यात्। कहते चलतर, चलतर माने अति, चलतर जानते ना, गुड बेटर बेस्ट, अच्छा उससे अच्छा सबसे अच्छा, एक चल है, दूसरा चलतर है, और तीसरा चलतम है, तो चल माने थोड़ा चंचल, और चलतर माने क्या हुआ, उससे ज्यादा चंचल, और चलतम माने क्या हुआ, सबसे ज्यादा चंचल। तो यहां क्या है, चलतर माने क्या हुआ, चंचल तरंगों के कारण है, अतिचल अति चंचल तरंगों के संगात माने साथ से, तरंगें क्या कर रही हैं, हिल रही हैं, तो हिलने से भास्करस्य प्रतिबिंबम, जो सूर्य की परछाई पड़ती है तो परछाई उसमें क्या दिखती है, चंचल दिखती है कि स्थिर दिखती है, तो भास्करस्य प्रतिबिंबम चंचलम स्यात्, जो सूर्य की परछाई पड़ती है तो वह क्या दिखती है, चंचल दिखती है। अस्ति तथा चंचलता चैतन्य चित्त चांचल्यात, उसी प्रकार से चित्त की चंचलता से, किसकी चंचलता से, चित्त की चंचलता से, अचित्त में किसकी परछाई पड़ गई है, चैतन्य की परछाई पड़ गई है, चित्त की चंचलता से चैतन्य में भी चंचलता प्रतीत होती है, जबकि ध्यान देना, जबकि चित्त के चंचल होने से चैतन्य में चंचलता दिख तो रही है, लेकिन चंचलता दिखने पर भी वास्तव में उसमें चंचलता होती ही नहीं है, कहोगी भाई उसमें चंचलता नहीं होती है, ऐसे हम कहते मैं यहां आया मैं वहां गया, बोलते नहीं बोलते, तो मैं आया मैं गया क्या बताओ, आप आते जाते हो, हैं? कौन आया गया, शरीर आया गया जिसे आप कार से आए थे यहाँ, तो कहे मैं कहाँ जा रहे हो, स्वामी स्टेशन जा रहा हूँ अथवा प्रेमपुरी जा रहा हूँ, अथवा प्रेमपुरी आप जा रहे हो, कार जा रहा है, आप तो कार में क्या हो चुपचाप। तो कार के जाने को हमने आरोपित कर लिया किसके ऊपर, अपने ऊपर। ऐसे हम बगैर बुद्धे जवान नहीं हुए, मेरे अपने ही ऊपर बचपना आया उसको देखा, जवानी आई उसको भी देखा, अब बुढ़ापा आ रहा है उसको भी देखूंगा, अब बुढ़ापे के बाद शरीर जब छूटेगा तो उसको भी क्या करूंगा, देखूंगा, जो शरीर दूसरा पैदा होगा उसको भी मैं देखूंगा। तो मेरे ही अपने स्वरूप पर ये अवस्थाएं आती हैं और चली जाती हैं, मैं साक्षी इनसे अलग होकर के क्या करता हूं, देखता हूं, लेकिन इस शरीर के साथ संबंध बना लेने से न मैं अपने आप को क्या मान लेता हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बुढ़ा हूं, जबकि मैं बच्चा अच्छा नहीं हूं, सच बताऊं कि बच्चा हूं या मैं जवान हूं अथवा मैं बुढ़ा हूं, मैं बुढ़ा नहीं हूं, ये बुढ़ा कौन है, शरीर है इस शरीर के। अच्छे भाई यदि आप शरीर के साथ बुढ़े हो गए होते तो शरीर के बुढ़ापे का आपको ज्ञान होता क्या, नहीं होता, सही बताऊं। कभी आप देखना दो बच्चे साथ पैदा हूं, साथ बढ़ रहे हूं, तो उनके बढ़ने का ज्ञान नहीं होता, होता है, साथ ही चल रहे हो तो एक ट्रेन देखना भाई, दोनों ट्रेन साथ चल रही हूं, एक स्पीड में चल रही है, तो ट्रेनों में गति है क्या, बोध होता है क्या, तो दूसरी चल रही है, दूसरी चल रही है, इसको जानने के लिए एक को क्या होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, तभी तो भाई मैं यहां चौराहे पे खड़े होकर के तभी सब गाड़ियों को आते जाते देख सकता हूं। अब हम किसी गाड़ी पे खुद बैठ के चले गए तो बताओ दूसरी गाड़ियों के विषय हम जानेंगे क्या, नहीं जान सकते ना। उसी प्रकार से इस शरीर के बढ़ने घटने के साथ यदि हम खुद बढ़ और घट गए तो शरीर के बढ़ने घटने का बोध हमें होगा नहीं। तो शरीर के बढ़ने घटने का बोध हमें हो रहा है, इससे यही सिद्ध हो रहा है कि शरीर के बढ़ने पर भी हम बढ़े, हम तो एक ही रूप हैं, अपने ही शरीर के ऊपर बचपना आया, जवानी आई, बुढ़ापा आई, इन अवस्थाओं को देख रहे हैं, सारे दृश्य मेरे ऊपर आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं जहां का तहां क्या हूं, बैठा हूं, साक्षी कूटस असंग निर्लेप आत्मा हूं। लेकिन मेरे में, अच्छा आप कभी सोते हो क्या, बोलो भाई आप सोते हैं पक्का, लेकिन ध्यान ना यहां भले बोल देना, घर में ना बोल देना, घर में बोल दोगे लोग साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगे, ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। घर में तो बोलना पड़ेगा मैं सोता हूं, इतने घंटे सोया इतने घंटे जागा, लेकिन आप देखना आप सोते हो क्या, अभी आप सो रहे हो जग रहे हो मेरे बता दो, चलो अभी आप क्या है पक्का जगे हैं, ये तो मान जाओ नहीं मान जाओ। अच्छा जब सपना देखते हो तब सोते हो जागते हो मेरे बता दो, सपना जब देखते हो तब सोते नहीं हो, यदि सो गए होते तो मैंने यह देखा ये कैसे बताते, तो मैंने इतना सुंदर सीन देखा, इन भोगों को भोगा, यहां यहां गया, उसको जानने वाला जग रहा सो रहा है, और जब गहरी नींद में ध्यान गहरी नींद में आप सो जाते हो जिसको कहते एकदम सुसुप्ति आई, उसमें आप जग रहे थे सोए थे, उसमें कोई कला सोए थे लेकिन उसमें भी आप जग रहे थे, क्यों, क्योंकि आप बताते हो जब उठते हो, उठना बोल देते लेकिन उठते नहीं हो, जब आपका बुद्धि के साथ संपर्क होता है, इंद्रियों के साथ जब बोलने की शक्ति मिल जाती है तो उस समय आप बोल देते हो, क्या बोलते हो कि महाराज जी कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बड़ा क्या था शांत सोया, आनंद से सोया, तो कुछ नहीं देखा, उसको देखने वाला उसको अनुभव करने वाला जग रहा तक सो रहा था, और जो सुख का अनुभव किया वो जग रहा तक सो रहा था, तो आप बताओ कब सोए हो मेरे बता दो, 24 घंटे में आज तक आप सोए ही नहीं हो, लेकिन आप लोग क्या मानते हो मैं सो रहा हूं मैं जग गया हूं। ये सोना जगना बुद्धि का खेल है, क्या करती है आपकी बुद्धि सो जाती है अथवा बुद्धि क्या करती है जग जाती है। अब बुद्धि के सोने और जगने को हम लोग क्या मान लेते हैं अपना सोना और जगना मान लेते हैं, जबकि मैं न कहीं आता हूं न मैं कहीं आना जाना किसका काम है शरीर का, लेकिन हम शरीर में मैं बुद्धि करके अपने आप को आना जाना मान लेते हैं। बढ़ना घटना किसका काम है विकारी होना किसका काम है? शरीर का काम है। इस शरीर में मैं संबंध बना करके हम अपने आप क्या मान लेते हैं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं घट रहा हूं, मैं विकारी हो गया हूं, विकारी माने लंगड़ा लूला हो गया हूं। तो शरीर के विकार को हम अपना विकार मान लेते हैं, क्योंकि शरीर के साथ हम अपने संबंध को बना लेते हैं। यदि शरीर से हम अलग अपने आप को जान ले, कैसे जानना, वही मैंने बताया कि अंतःकरण में जो चैतन्य की परछाई पड़ गई, तो अंतःकरण की चंचलता से चैतन्य चंचल सा दिखता है, लेकिन चंचल सा दिखता हुआ भी वास्तव में चंचल होता नहीं है। यदि ये बोध हो जाए तो शरीर इंद्रिय मन किसी भी रूप में रहे, कैसी भी अवस्था में रहे, उससे आप क्या रहोगे, असंग निर्लिप्त शांत रहोगे। अच्छा, आप खाते हो क्या? नहीं खाते ना? हाँ भाई, आप खाते भी नहीं हो। देखो अब क्या खाते हो बताओ, गर्मी के समय में थोड़ा शरीर से पानी निकल जाता है तो हम पानी डाल लेते हैं, कमी कर देते हैं, थोड़ा मांस जल जाता है तो थोड़ा भोजन डाल देते हैं, और क्या। अरे जलाता उलाता कौन है, प्राण में भूख प्यास लगती है। किसमें लगती है? प्राण में भूख प्यास लगती है। मैं तो उस प्राण को सत्ता देकर के मैं भूखा हूं, उस भूख का साक्षी मैं भूख से अलग हूं। भूख का जो साक्षी है कि क्योंकि भूख लगी है, तो जो भूख लगी है उसको देखने वाला निश्चित क्या होगा? अरे भाई आप दुबले दिख रहे हो, तो दुबले दिख रहे हो तो जो दुबले दिख रहे हो तो दुबला देखने वाला दुबले हुए व्यक्ति से क्या होगा, अलग होगा कि नहीं होगा? तो मुझे भूख लगी है या मेरे प्राण में भूख लग रही है, कुछ पेट में चूहे कूद रहे हैं, उस चूहे के कूदने का एहसास करने वाला उससे अलग होगा कि नहीं होगा, मुझे बता दो। तो जब देखा तो इसमें थोड़ा चूहे मतलब लग रहा है, मुंह सूख रहा है, इसका लक्षण है शरीर को क्या चाहिए, पानी चाहिए, तो पानी डाल दिया। थोड़ी कमजोरी लग रही है, पेट में थोड़ा सा खाली खालीपन लग रहा है, इसको एहसास कर रहा हूं, तो थोड़ा इसमें क्या किया, भोजन डाल दिया। तो मैं इससे अलग इसका साक्षी बना हुआ हूं, लेकिन मैं न भूखा हूं न मैं क्या हूं, प्यासा हूं। ये भूख प्यास किसका काम है? प्राण का काम है। सुख दुख किसका काम है? मन का काम है। ठीक है ना? सोना जगना किसका काम है? बुद्धि का काम है। ये बढ़ना घटना किसका काम है? शरीर का काम है। मैं तो सबसे अलग कैसा हूं? एक रूप असंग निर्लिप्त आत्मा हूं। और जिस क्षण आप उस आत्मा को जान जाओगे तो सारी क्रियाओं से आप क्या हो जाओगे? अलग। साक्षी नाटक देखोगे संसार का। कभी देखा है ना नाटक? रोज देखते। मुंबई का तो, मुंबई तो नगरी ही है किसकी, नाटकबाजों की नगरी ही है। फिल्म इंडस्ट्रीज तो मुंबई ही है ना भाई, तो यहाँ तो सारे लोग क्या है, नाटक ही चल रहा है। बाहर तो यही प्रसिद्ध है, कहाँ, मुंबई के बाहर। मुंबई को क्या लोग बोलते हैं? नाटक की नगरी है, नहीं माया नगरी, नाटक की नगरी, जादू की नगरी। चलो जो भी है, एक बच्चा है, बच्चा शीशा देखता है, ठीक न, चुमता है, पकड़ता है, अब माँ क्या करती है बोलो, छिप करके उसके किसी नाटक में कोई हस्तक्षेप करती है, बड़ी शांति से देख के मजा लेती है, ध्यान देना। आज जैसे माँ उस बच्चे के सामने आती है, बच्चे को क्या आती है, शर्म आ जाती है, और देखना क्या कर देता है, बंद चुपचाप। ऐसे आप छिप करके इस सारी दुनिया का क्या करो, नाटक देख करके क्या करो, आनंदित रहो। सच बता रहो, आनंदित रहो। किसी के भी नाटक से आप दुखी न हो। और कहीं यदि आप दिख गए ना तो दुनिया नाटक करना क्या करेगा, अपनी साक्षी में आप स्थित हो गए ना तो दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। ये आगे बताऊंगा 2-3 तारीख में, बहुत गजब का प्रसंग है आगे का प्रसंग, लेकिन वो बाद में ही बताऊंगा। कि जब जिस समय आप अपने उस स्वरूप में एकदम निष्ठ हो जाओगे तो कहोगे अभी अभी तो जगत दिख रहा था, अचानक ये सारा जगत कहां गायब हो गया, अभी अभी तो दिखाई दिया था, तो फिर आपकी दृष्टि में जगत का सारा खेल ही क्या हो जाएगा। इसलिए जगत अपना खेल खेलने दो, आप उस जगत में क्या करते रहो, देखते रहो। बरा आपके भीतर का जगत तो नष्ट ही हो जाएगा, दूसरे के भीतर का जगत चल रहा तो उसको चलने दो, और उसको साक्षी बनकर के आप क्या करते रहो, देखते रहो। ऐसे हुआ था, नहीं बोलना चाहिए। एक बार मैं खंभात में खा, खंभात सुना है गुजरात में, तो बारिश हो रही थी, जिसे स्वाभाविक है अकेले ही दिन भर रहना पूरी बिल्डिंग में, यहां तो कई नौकर चाकर हैं, वहां तो अकेले ही रहना। तो छत पे ऐसे घूम रहा था, थोड़ा बारिश या गर्मी आए तो बिल्डिंग के नीचे एक कोई माई मतलब लड़की स्कूटी खड़ी की एक्टिवा, और उसमें पर्स खोलकर कुछ निकाला, कुछ लगाया लुगोया, शीशे में देखा और चली गई रास्ते में। अब देखना उससे हमें राग द्वेष नहीं है, है ना। ये सारे खेल हमें बच्चों के खेल दिखते हैं। जैसे आपके छोटे बच्चे मम्मी का वो ले करके क्या बन जाते हैं, हनुमान जी बन करके अपनी तस्वीर शीशे में देखते हैं, बगैर क्या हो जाते हैं, खुशी होते हैं, और मम्मी को अपनी तस्वीर दिखाने भी जाते हैं कि देखो मम्मी मैं कितना सुंदर बना हुआ हूँ। भाई नहीं, उसी प्रकार से जगत की सारी लीलाओं को देखते हुए उसका द्वेष नहीं होता है जगत, बल्कि सारी लीलाओं को देख करके वह क्या बनता है, साक्षी बनकर के उसके नाटक को देखता है, और उसकी बुद्धि में निश्चय होता है कि उस आत्मा में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समुद्र में कितनी ऊंची से ऊंची तरंगे उठे लेकिन जल में कोई फर्क पड़ने वाला, तो हमारे अपने स्वरूप पर कितना भी जगत पैदा होवे अथवा जगत नाश हो जावे, इस जगत के पैदा होने नाश होने पर भी मेरा बाल बांका होने वाला। वो जो एक पुस्तक है दुर्वासना प्रतिकार दशकम, उसमें मैंने एक कथा लिखी थी कि एक ऊंट एक पक्षियों को भगाने वाली कोई माई थी, मतलब खेतों में खलिहान में पक्षी आते हैं ना, दाने चुग जाते हैं, तो एक कनस्तर में कुछ पत्थर डाल करके रस्सी से बांध करके वो माता क्या करती थी, हिलाती थी, तो उसकी आवाज को सुनकर के पक्षी भाग जाया करते थे। तो एक दिन उसी खेत में एक ऊंट आ गया, तो ऊंट खेत को खाना शुरू कर दिया, तो उस माता ने क्या किया, हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन हिलाने की आवाज को सुनकर के भी ऊंट भागा नहीं। तो इस माई ने कहा कि अरे ऊंट, इसकी आवाज को तो सुनकर के बड़े बड़े पक्षी भाग जाते हैं, तू क्यों नहीं भागता। तो ऊंट ने कहा मैया, इस पीठ पर युद्ध के मैदान में बड़े बड़े तोप गोले दगे थे, जब तोप गोलों की आवाज को सुनकर के भी मैं कस से मस नहीं हुआ, तेरा झुंझुना मेरा क्या करेगी। झुंझुना जानते ना, हाँ, ये तेरा झुंझुना मेरा क्या कर लेगी। तो उसी प्रकार से मेरे अपने स्वरूप पर कितनी बार जगत पैदा हुआ और कितनी बार जगत लय हुआ, कितनी बार जगत के कितने खेलों को मैंने देखा है, और जब उस समय भी मेरा बाल बांका नहीं हुआ, तो 2, 4, 10, 20 घटनाएं दुनिया में घटित तो हो गई, तो आपको क्या विक्षिप्त कर देंगे क्या, तो आपका मन हर अवस्था में क्या रहेगा, शांत रहेगा। जिस क्षण आपको ज्ञान होगा, तो आगे चलते हैं। अब एक प्रश्न आता है, इस प्रश्न को इस श्लोक में बताया गया है, 116वें श्लोक में, ननु अर्क प्रतिबिंब सलिलादीसु यह स चा अवभासयति किम इतर पदार्थ निवहम प्रतिबिंबो अपि आत्मनः तदवत। ननमन लेकिन अर्क प्रतिबिंब, अर्क माने सूर्य का जो प्रतिबिंब है, परछाई है, किसमें पड़ा, सलिल आदिशु, जल आदि में जो सूर्य की परछाई पड़ी, यह माने जो अर्क प्रतिबिंब, सूर्य का प्रतिबिंब जल आदि में पड़ता है, सच अवभासयति, वह दूसरे पदार्थों को भी प्रकाशित करता है, नहीं करता। भाई घर के भीतर थाली, घर के बाहर थाली हो, थाली के ऊपर सूर्य की परछाई पड़ती है, और उस परछाई का रिफ्लेक्शन कहां जाता है, कमरे के भीतर किसी दीवार खिड़की पे पहुंचता है, नहीं पहुंचता है। ऐसे घर के बाहर किसी बाल्टी में पानी हो, अब यहां तो सूर्य नहीं दिखता, लोगों के पास छोटे छोटे घर हैं, कहां सूर्य दिखेगा, लेकिन जो खुले घरों में रहते हैं वहां बाल्टी या परात या किसी बर्तन में पानी रखा हुआ है, उस पानी से रिफ्लेक्टेड होकर के कहां परछाई जाती है, किसी दीवार में, और कभी पानी हिल रहा हो ना, तो परछाई भी क्या करती है, हिलती हुई दिखती है। तो जैसे सूर्य की परछाई जल आदमी पड़ती है, तो वह दूसरे पदार्थों को भी क्या करती है, प्रकाशित करती है। परछाई, ध्यान देना, परछाई दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करती है। तो किम इतर्थ इतर, किम इतर पदार्थ निवहम, क्या दूसरे पदार्थ समूहों को प्रतिबिंबो अप्यात्मन है, आत्मा का जो परछाई पड़ता है उसी सूर्य की परछाई की तरह आत्मा की भी जो परछाई पड़ती है, जो चिदाभास है, वह भी क्या दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करेगा क्या? भाई यदि प्रतिबिंब आत्मा की परछाई बुद्धि में पड़ी तो उस परछाई का जो रिफ्लेक्शन होगा वह रिफ्लेक्शन भी दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करना चाहिए या करना चाहिए? यदि वो परछाई है तो क्या सूर्य की परछाई की तरह चैतन्य की भी परछाई क्या दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करेगी? बोलो भाई, करेगी। कैसे करेगी आप लोग जानते ही जानते हो, वो उदाहरण ध्यान देना, वो बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण है। घड़े में क्या भरा है? जल। जल को अभी जल को झांको तो अगल बगल की दीवारें कैसी हैं? पूरा ज्ञान है? नहीं होता है। सही बताओ, नहीं होता है। जैसे जल में परछाई पड़ गई तो उस परछाई का जो रिफ्लेक्शन जाता है तो अगल बगल की दीवारों में जो जल थोड़ा खाली है, जो जल से क्या है घर आधा भरा है, तो ऊपर की दीवारें क्या करती हैं? दिखती हैं, तो खुदरी दिखती हैं। मेरे को नहीं मालूम था, सही बता रहा हूं। जैसे बाहर घड़ा चिकना होता है तो मैं तो समझता था कि भीतर भी घड़ा क्या होता होगा, चिकना ही होता होगा, लेकिन भीतर घड़ा चिकना नहीं होता है, भीतर घड़ा क्या होता है? खुदरा होता है, होता नहीं? तो देखा, अब तो बाद में जैसे परछाई पड़ी तो परछाई का जो रिफ्लेक्शन हो गया अगल बगल की दीवार को क्या किया? प्रकाशित किया, नहीं किया? अब मान लो ऊपर ही दीवार में 5 छेद कर दो तो वो प्रकाश क्या करेगा? उन छेदों से बाहर निकलेगा। अब 5 छेदों की जगह 5 पदार्थ रख दो तो उस 5 पदार्थों को प्रकाशित करेगा, नहीं करेगा? ऐसे शरीर घड़ा है, अंतःकरण जल है, उस जल में किसकी परछाई पड़ी? चैतन्य की परछाई पड़ी। तो परछाई पड़ने के बाद, परछाई पड़ने के बाद जो रिफ्लेक्शन आया है वो 5 छेदों से बाहर निकलता है, आंख कान नाक मुंह और त्वक, और इन 5 विषयों को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य का परछाई इतर पदार्थों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से चैतन्य की भी जो परछाई बुद्धि में पड़ती है, पढ़ने के बाद जो उसके प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है वह रिफ्लेक्शन आंख कान नाक मुंह से बाहर निकल करके शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषयों का ज्ञान करता है। इसी को बता रहे हैं 117 और 18वें श्लोक में, प्रतिफलितम यत् तेजः सवितु कांस्यादि पात्रेषु तद अनु प्रविष्ट मंतर गृहम अन्या अर्थान प्रकाशयति। एक दृष्टांत है, सवितु या तेज है, सूर्य का जो प्रकाश है, सवितु माने सूर्य का, यत माने जो तेज है, प्रकाश है, प्रतिफलितम है प्रतिबिंबित तो होकर के, सूर्य का जो प्रकाश है वह क्या होता है? प्रतिबिंबित तो होकर के कहां प्रतिबिंबित होता है? कांस्य आदि पात्रेषु, कांसे आदि के पात्रों में, कांसे आदि के बर्तनों में प्रतिबिंबित होकर के, तद अनु प्रतिबिंब के पश्चात प्रविष्टम अंतर्गृहम घर के भीतर प्रवेश करके अन्य अर्थान प्रकाशयति दूसरे विषयों को प्रकाशित करता है। ये तो खूब देख लेना आप, देखो सामान्य रूप से देखो तभी वो दीवार का पूरा रंग नहीं दिख रहा है अच्छी तरह से। यदि कोई सूर्य का रिफ्लेक्शन लेकर के वहां फोकस करो तो एक एक धब्बे वहां दिखाई दे जाएंगे। प्रतिबिंब में सूर्य के प्रकाश से भी विशेष सामर्थ्य आ जाती है, नहीं आती? सूर्य के विशेष प्रकाश से भी प्रतिबिंब में विशेष सामर्थ्य आ जाती है। देखो सूर्य के सामान्य प्रकाश मुंह जलता है क्या? लेकिन सूर्य का ही प्रकाश दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर के आपके मुंह पर डाला जाए तो आंखें क्या हो जाती हैं? चौंधिया जाती हैं। चेहरे में क्या हो जाती है? जल अंदर, वहां विशेष प्रकाश पैदा हो जाता है। कैसे? यहां बता रहे हैं कि कांसे आदि में सूर्य की जो परछाई पड़ती है वह परछाई घर में प्रवेश करके दूसरे पदार्थों का भी ज्ञान कराती है। तो उसी तरह से चित्त प्रतिबिंब तदवत बुद्धिसु यो जीवताम प्राप्त है नेत्रादिन्द्रिय मार्गैः बहिः अर्थान् सो अवभासयति चित्त प्रतिबिंब उसी प्रकार से जो चैतन्य का परछाई है तदवत माने उसी प्रकार से चैतन्य की परछाई कहाँ पड़ती है बोलो भाई बुद्धिसु अंतःकरण में अथवा बुद्धि में यो जीवता प्राप्तम अंतःकरण की परछाई बुद्धि में पड़ करके क्या बन जाती है जीवत्व भाव को जो प्राप्त हुई है वही परछाई नेत्र आदि इंद्रिय मार गई है नेत्र आदि इंद्रियों के मार्ग से बहिर माने बाहर अर्थान स अवभासयति अर्थों को विषयों को प्रकाशित करती है ये आपने प्रैक्टिकल करके जान लिया इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता है ही नहीं क्या है प्रैक्टिकल करके जान लिया अब ये बताओ अब ध्यान देना थोड़ा सा जल को हटा दे थोड़ा जल को हटा देते हैं क्योंकि अब हमें तत्व में पहुंचना है ना एक दीपक जलाओ अब इस जो 119 श्लोक है 119वें श्लोक का संबंध है पहले ले जाना 93-94 श्लोक से ले जाना है तो आपके पास होगा नहीं घना अंधकार है आप में नहीं है उसमें घना अंधकार है ध्यान देना क्या है घना अंधकार है घने अंधकार में घर के भीतर एक दीपक रखो क्या करना है घर के भीतर एक प्रकाश में दीपक रखो दीपक के ऊपर 5 छेद वाला कोई घड़ा रख दो प्रैक्टिकल कर रहा हूं इसलिए मैं बताए इस ग्रंथ की महत्व इसीलिए है कि आओ करके सीखें आप लोगों ने था नहीं कक्षा 4थी 5वीं में विज्ञान का वो था जल जितना नीचे होता है मतलब दबाव उतना ज्यादा बढ़ता है जैसे तो एक वो लेते थे डिब्बा लेते थे नीचे छेद करते थे और ऊपर छेद करते थे पानी भर देते थे तो जो ऊपर से पानी निकलता था नीचे ही निकलेगा और नीचे जो पानी निकलता है कहां जाता था दूर जाता था तो जितना नीचे होता जाएगा दबाव उतना तो विज्ञान आओ करके सीखें ठीक है ना तो प्रैक्टिकल है घना अंधकार है घने अंधकार में घर के भीतर पृथ्वी के तल पर एक हमने क्या रखा दीपक रख दिया उस दीपक के ऊपर एक क्या रखा 5 छेद वाला घड़ा नीचे मुंह करके रख दिया उल्टा करके रख दिया अब प्रत्येक छेद के बाहर 5 पदार्थ रख दिए कहीं बीड़ा कहीं कस्तूरी कहीं रत्न कहीं पंखा रख दिया अब उन छेदों से प्रकाश बाहर निकलेगा और निकल करके बाहर के विषयों को प्रकाशित करेगा या नहीं करेगा पदार्थों का ज्ञान होगा अब बताओ ज्ञान किससे हो रहा है चलो छिद्र से उन विषयों का ज्ञान किससे हो रहा है छिद्र से बोलो कलश से घड़ा से अथवा मिट्टी से अथवा पात्र से तेल का जो बर्तन है अथवा तेल से अथवा बत्ती से बताओ उस वस्तु का ज्ञान क्या इन सबसे हो रहा है क्या तो इंद्रियों के ज्ञान में एकमात्र कारण दीपक का प्रकाश है और कुछ नहीं है पात्र शरीर हो गया ठीक है ना तेल अंतःकरण हो गया बत्ती प्राण हो गई है इन सबसे वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा है ज्ञान किससे हो रहा है मात्र दीपक के प्रकाश से हुआ है इसी प्रकार से हर के शरीर में जो भी ज्ञान होता है उस ज्ञान का जो आधार है वह आत्मा है ज्ञान का आधार कौन है वही चैतन्य ध्यान नभी यहां आना चैतन्य की परछाई पड़ी परछाई से ज्ञान तो हुआ परछाई का जो रिफ्लेक्शन गया रिफ्लेक्शन का जो प्रकाश गया वह प्रकाश किसका था प्रकाश से ही वस्तु का ज्ञान हुआ लेकिन वो प्रकाश किसका था चैतन्य का ही था तो ज्ञान का आधार कौन है परछाई अथवा शुद्ध चैतन्य है शुद्ध चैतन्य है तो वही शुद्ध चैतन्य मैं हूं वही शुद्ध चैतन्य कौन हूं मैं हूं जो वह जान जाता है उसके ऊपर कोई देवता शासन करने में समर्थ ही नहीं होता है वह सबकी आत्मा बन जाता है वह सबके रूप में अपने आप को जान लेता है इसी भाव को कौन से श्लोक बता रहे हैं 119वीं में इसलिए उसी को जानना बहुत जरूरी है तद इदम यह एव मारियो वेद ब्रह्मा अहम अस्मीति स इदम सर्वम च स्यात् तस्य हि देवाश्च नेसते अभूत्यै तद इदम वह। ध्यान देना, अभी ध्यान देना, अभी जो मैंने प्रैक्टिकल कराया वह परोक्ष ज्ञान था। ज्ञान तीन तरह के हैं, एक परोक्ष है, दूसरा प्रत्यक्ष है, तीसरा अपरोक्ष। कैसे? गुड़ मीठा होता है, क्या है? गुड़ की भेली कैसी होती है? मीठी होती है। सुना है श्रीखंड मीठा होता है, लेकिन हम श्रीखंड जानते नहीं, देखे नहीं, सकले नहीं देखा हूं। एक ज्ञान मात्र परोक्ष है मेरा। ज्ञान कैसा है? अरे वहां बहन ने ले आकर के श्रीखंड की कटोरी रख दिया महाराज, ये क्या है? श्रीखंड है। श्रीखंड देखा, सफेद सफेद रंग की, या थोड़ा केसर डाल दिया तो क्या है? हल्का लाल रंग की, क्या है? श्रीखंड है। तो केसरिया रंग की श्रीखंड है, वो ज्ञान क्या हुआ? प्रत्यक्ष। अब उस श्रीखंड को क्या किया? खा लिया, तो इसके स्वाद को जान लिया, तो ज्ञान कौन सा हो गया? अपरोक्ष। ऐसे ब्रह्म का ध्यान देना जो स्वरूप है वह ज्ञान तीन ढंग से होगा। पहला है परोक्ष, दूसरा है प्रत्यक्ष, तीसरा है अपरोक्ष। अब आपको शास्त्र जो है कौन सा ज्ञान कराता है? परोक्ष ज्ञान कराता है। शास्त्र के द्वारा अप्रत्यक्ष नहीं हो सकता, शास्त्र द्वारा क्या कराएगा? परोक्ष ज्ञान। शास्त्र से सुना है कि सब क्रियाओं का आधार आत्मा है, आत्मा है तो आनंद है, सुख दुख, जो भी सब क्रियाओं का आधार कौन है? सत चित असंग आत्मा, निर्लेप आत्मा, व्यापक आत्मा, ये कहां सुना है आपने? इस ज्ञान का नाम क्या है? परोक्ष। ध्यान देना, गुरु क्या कराएगा? उस ज्ञान का प्रत्यक्ष करा देगा। क्या कराएगा? तुम कैसे ज्ञान का आधार है तो वो प्रैक्टिकल करके दिखाएगा। तो अभी हम आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाया, जितनी भी वस्तु का ज्ञान हो रहा है उस वस्तु के ज्ञान में आधार कौन है? प्रकाश की किरण। तो संसार में भी जो ज्ञान कर रहे हो उस ज्ञान का आधार कौन है? आत्मा। प्रत्यक्ष हो गया नहीं हो गया? बताओ, नहीं हुआ। अरे भाई बिजली है कि नहीं है बताओ? कैसे जाना? बल्ब से, पंखे से, है ना, माइक की आवाज आ रही है। तो अब ये बिजली है क्या? लेकिन इसकी अनुभूति को जान करके बल्ब जल गया, इसके मतलब बिजली पावर है। पंखा चल गया, इट मीन्स पावर है। तो गुरु ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। अथवा और मैं बताता हूं, कई युक्तियों से बताते हैं। गुरु क्या करता है? उस तत्व का अनुभव क्या करता है? युक्तियों से सिखाता है। जैसे हम कहते हैं आप व्यापक हो, व्यापक हो किसी शरीर में हो बताओ? एक साथ आप एक शरीर में रहते हो, दो में हो? हम आप में है ही नहीं है? अरे हमारे कहने से न मानो, अपरोक्ष करे युक्ति से देखो। जब हम सोते हैं, थोड़ा देखो भाई, ये वेदांत में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, क्या करें, इसलिए इसका नाम है श्रवण मनन और निध्यासन। मनन किए बिना न यहाँ काम, ये तो इसी कथा नहीं, नाच गा के चले जाओ, थोड़ा मन लग गया, मनोरंजन लगा, बड़ा बढ़िया आ गया, मजा आ गया। ये कथा तो ऐसी है कि यहाँ जाने के बाद आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। अच्छा आप यहाँ सो जाओ, सोए कहाँ सोए हैं बोलो भाई? मुंबई में। और हम सपना देखना शुरू कर देते हैं, कहाँ? हरिद्वार में। अब बताओ एक साथ आप एक जगह हो दो जगह हो, भाई बता दो। चलो दो शरीरों में आप सत्ता दे रहे हो, नहीं दे रहे हो? कि एक ही शरीर में सत्ता दे रहे हो? दो में दे रहे हो, एक शरीर में सामान्य रूप से हो, जहां सुख दुख का आपको अनुभव नहीं, लेकिन सामान्य रूप से हो। और जो स्वप्न का शरीर है वहां क्या हो? विशेष रूप से हो। और जहां विशेष रूप से हो वहां गंगा जी नहा रहे हो, क्या कर रहे हो? ठंडी लग रही है, तो वहां विशेष रूप से हो। तो एक साथ एक ही काल में आप बताओ हरिद्वार में भी हो, और एक ही काल में आप कहां हो? बंबई में भी हो। बताओ दो दो जगह होगे नहीं हो? अच्छा स्वप्न में और जितने शरीर हैं उन सारे शरीरों में आप होगे नहीं? आप हो, क्योंकि आपके उठने के बाद ही, आपके वहां से आने के बाद ही स्वप्न का सारा शरीर आपके साथ ही क्या हो जाता है? लय हो जाता है। तो स्वप्न में जितने शरीर हैं, गंगा जी हैं, जमुना जी, सब में आप होगे नहीं? आप हो। तो बताओ आप एक जगह हो, सब व्यापक हो। तो ये अनुभव युक्ति से अपनी व्यापकता का हमने क्या किया? बोध कर लिया। एक गुरु आपको ज्ञान कराएगा, कौन सा ज्ञान बोलो भाई? प्रत्यक्ष ज्ञान। हाथ में आंवले की तरह کیا کرے گا؟ گرو دکھا دے گا یہ برہما ہے دیکھ لو. آپ کو برہم دکھا نہیں دکھا بھی دیا نا سب کے بھیتر انسوہت روپ سے. یا ایک یوکتی میں نے آج سے بتایا تھا آپ کو ٹائم ہوگا کیا کرنا لیکن یوکتی ہے. یہاں آپ کیا کر رہے ہو بولو؟ سن رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو؟ بول رہے ہو؟ بول رہے ہو بیچ بیچ پلکے جھپکا رہے ہو؟ سانس لے رہے ہو؟ خون کا پرواہ چل رہا ہے سب؟ تو کچھ کیائیں بدھی کے ساتھ ہیں تو اس میں کرتتو بدھی ہے, اور کچھ کیائیں بنا بدھی کے ہی ہو رہی ہیں تو اس میں کرتاپن نہیں ہے. لیکن چاہے بدھی کے ساتھ کرو اور چاہے بدھی کے بنا کرو, ان ساری کریاؤں کو کرنے والے کون ہیں؟ میں. ٹھیک ہے, سانس پڑوسی نہیں لے رہا ہے, بھوجن پڑوسی نہیں پچا رہا ہے, کھانا ہے آپ کو, شوچ کرنے آپ جاتے ہو تو پچاتا کون ہے؟ پڑوسی. آپ ہی پچاتے ہو, سارا کام کون کر رہا ہے؟ اچھا ایک پیڑ ہے, پیڑ کے بھیتر رس نیچے ڈالتے ہیں اوپر پہنچاتا ہے, پہنچ جاتا ہے, کون ڈالتا ہے کون لے جاتا ہے؟ پیڑ لے جائے گا. پیڑ کیا اس کو عقل ہے کیا؟ اس کے بعد بدھی اتنی تو ہے ہی نہیں تو کیسے لے جائے گا؟ کوئی نہ کوئی شکتی. نیم کے بھیتر ہی جو شکتی ہے وہی شکتی ہی نہیں ہے تو اس پیڑ کے بھیتر شکتی وہی ایک الگ ہے تو اسی کا نام ابھی آپ نے کیا دیا تھا؟ میں. تو میں ہی پیڑ میں بیٹھ کر کے پیڑ کو بھی ستا دے رہا ہوں, میں ہی سور میں بیٹھ کر کے سور کے بھیتر بھی سارے بھوجن کو پچا رہا ہوں, میں ہی چیٹی میں بیٹھ کر کے دن بھر کام بھی میں کر رہا ہوں, اور میں ہی شریر میں بیٹھ کر کے, کیونکہ وہی شکتی تو کیا ہے میرا اپنا کیا ہے سوروپ ہے. تو آپ اپنے آپ کو سب کے بھیتر دیکھ لیا نہیں دیکھ لیا؟ ایک پرتیکش لیکن ایک دم انبھو میں آ جائے. ابھی ہماری بات نہ ماننا, اس کو اپنے وچار سے جان لینا. تو جس کسی کو اپنی برہم روپتا کا گیان ہو جائے گا وہ سب کچھ ہو جائے گا. تد ادم مطلب وہ یہ وہ برہم میں ہی ہوں, مطلب یہ ایوم آریو وید جو کوئی شریشٹھ پروش آج بولا گیا ہے ایسا جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ برہم اہم اتی. وہ برہم تو کون ہوں؟ میں ہوں. تو س ادم سروم سیات وہ سب کچھ ہو جاتا ہے. اب آپ بتاؤ سب کچھ ہوگا ہی نہیں ہوگئے؟ برکش بھی, کتا بھی, بلی بھی, بکری بھی, چوہا بھی, سب کچھ کے روپ میں کس کی سکتا ہے؟ تب سے ہی دیواش نئیشتے. اب دیوتا اس کے اوپر شاسن کرنے میں سمرتھ ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اس کا پرابھاؤ ابھوتے مانے اس کا پرابھاؤ, پرابھاؤ نے برہم بھاؤ سے پتن, برہم بھاؤ سے چت کرانے میں دیوتا بھی سمرتھ ہے. ارے برہم سے ہٹاؤ گے کہاں ہٹاؤ گے بتاؤ؟ سب جگہ میں ہی تو ہوں, کہاں لے کے جاؤ گے بتاؤ؟ لیکن جو ایسا نہ جانے اس کے لیے کیا کیا دکھ اٹھانا پڑتا ہے, اس پہ چرچا ہم لوگ کب کریں گے؟ کل کریں گے. آج اتنا ہی. اوم پورمد پورمدم پورنات پورمدچتے پورنسیا پورنمادائے پورمیوا وشیشتے. اوم شانتی شانتی شانتی.